नमस्कार ज्ञान गोष्ठी में। आज हम एक ऐसे विलक्षण विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका सफर गणित की ऊंचाइयों से शुरू हुआ और फिर दर्शन की गहराइयों तक पहुंचा। अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड
जी
1861 में इंग्लैंड में जन्मे और 1947 में अमेरिका में दिवंगत हुए। पहले गणितज्ञ, फिर एक कह सकते हैं मौलिक दार्शनिक बने।
हाँ, और ये सफर ही उनकी सोच को इतना अनूठा बनाता है ना। मतलब आम तौर पर विचारक एक ही धारा में बहते दिखते हैं,
सही,
पर व्हाइटहेड ने गणित और तर्कशास्त्र की वो जो कठोर सटीक दुनिया होती है वहां से शुरुआत की, और फिर जीवन के बाद के हिस्से में उन्होंने एक पूरी आध्यात्मिक व्यवस्था रच डाली
अच्छा,
जिसे हम प्रक्रिया दर्शन या प्रोसेस फिलॉसफी कहते हैं। ये वाकई एक असाधारण बदलाव था।
तो फिर उनका लक्ष्य क्या था इस पूरी यात्रा में, खासकर उस दौर में विज्ञान तेजी से बदल रहा था, पुरानी मान्यताएं वो सब टूट रही थी।
देखिए, उनका बड़ा मकसद था एक पुल बनाना, एक सेतु उस बिखराव के दौर में। वो विज्ञान, दर्शन और हमारा जो रोजमर्रा का जीवंत अनुभव है, हाँ, उसके बीच की खाई को पाटना चाहते थे। तो आज हमारी ये जो चर्चा है, ये गहन पड़ताल, वो इसी पर केंद्रित होगी। मतलब व्हाइटहेड के जीवन के मोड़, उनके क्रांतिकारी विचार, अहम किताबें, और हाँ, उनका हम पर आज भी क्या असर है, इसे समझना।
ठीक है, तो पहले उस जमाने को समझते हैं जिसमें व्हाइटहेड सोच रहे थे। जाहिर है ये कोई शांत दौर तो नहीं था।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास के सबसे कह सकते हैं तूफानी दौरों में से एक था। औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी, दो दो विश्व युद्धों ने दुनिया को झकझोर दिया था,
हाँ,
और विज्ञान में तो जैसे भूचाल ही आ गया था। आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत, फिर क्वांटम यांत्रिकी, इन सब ने ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। एक तरफ विक्टोरियन इंग्लैंड की वो न्यूटन वाली निश्चितता थी, डार्विन का विकासवाद था,
हाँ,
फिर तो दूसरी तरफ 20वीं सदी की अनिश्चितता, विखंडन, पारंपरिक धारणाएं जो थीं वो हिल चुकी थीं।
और इसी माहौल में उनके समकालीन भी बड़े दिग्गज थे, जैसे बर्ट्रेंड रसल का नाम तो उनके साथ जुड़ा ही है।
हाँ, बर्ट्रेंड रसल वो उनके शुरुआती दौर के सहयोगी थे, जिनके साथ मिलकर उन्होंने गणित पर वो कालजयी काम किया, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। हालांकि बाद में उनके रास्ते वो थोड़े अलग हो गए।
अच्छा,
फिर हेनरी बर्गसन थे, जिनके वो जीवन प्रवाह वाले विचारों का व्हाइटहेड पर असर दिखता है।
हाँ, बर्गसन।
अमेरिका में विलियम जेम्स और जॉन डेवी जैसे व्यवहारवादी और सुधारक थे, और बेशक आइंस्टाइन की वो जो वैज्ञानिक क्रांति थी वो तो पृष्ठभूमि में चली रही थी।
पर उन विश्लेषणात्मक दार्शनिकों के मुकाबले जैसे विटकिनस्टाइन या G.E. मूर, जो शायद भाषा के विश्लेषण पर ज्यादा जोर दे रहे थे, व्हाइटहेड उनसे अलग कैसे थे?
हाँ, यही व्हाइटहेड का अनोखापन उभरता है। जहाँ बाकी दार्शनिक, जैसा आपने कहा, भाषा की बारीकियों या तार्किक विश्लेषण में उलझे थे, व्हाइटहेड ने एक ज्यादा महत्वाकांक्षी रास्ता चुना। उन्होंने एक पूरी तत्वमीमांसा, मतलब मेटाफिजिक्स, गढ़ने की कोशिश की। एक ऐसा व्यापक ढांचा जो आधुनिक विज्ञान और हमारे गहरे मानवीय अनुभवों दोनों को समेट सके।
अच्छा,
वो एक तरह से प्लेटो, स्पिनोजा, लाइबनिट्ज़ की परंपरा में थे। सृष्टि के मूल स्वरूप को समझने का एक बड़ा रचनात्मक प्रयास कर रहे थे, न कि सिर्फ शब्दों के अर्थ तक सीमित थे।
चलिए उनके जीवन की कहानी में थोड़ा और उतरते हैं। इंग्लैंड के एक छोटे शहर रैम्सगेट में जन्म हुआ। परिवार में शिक्षा और धर्म का माहौल था।
जी, 1861 में जन्म हुआ। पिता स्कूल मास्टर और पादरी थे, तो पढ़ने लिखने का माहौल तो घर में ही था। बचपन से ही क्लासिक्स और इतिहास में रुचि थी, लेकिन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचकर गणित में उनकी जो असाधारण प्रतिभा थी वो सामने आई।
अच्छा,
इतने प्रतिभाशाली थे कि 1884 में वहीं फेलो चुन लिए गए। शुरुआती कई साल तो विशुद्ध गणित और तर्कशास्त्र को ही समर्पित रहे।
लेकिन फिर जिंदगी ने कुछ बड़े मोड़ लिए। पहला तो रसेल के साथ वो विशाल प्रोजेक्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका।
बिल्कुल, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। 1900 से 1913 तक रसेल के साथ इस पे काम किया। ये गणित की पूरी इमारत को तर्कशास्त्र की नींव पर खड़ा करने का एक कह सकते हैं महत्वाकांक्षी प्रयास था।
हाँ,
इसने आधुनिक सिंबॉलिक लॉजिक की नींव डाली। हालांकि बाद में कुर्ट गोडेल ने दिखाया कि ये लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हो सकता।
हाँ, गोडेल के प्रमेय।
जी, पर इस काम का महत्व अभूतपूर्व था, इसमें कोई शक नहीं।
और दूसरा मोड़ शायद ज्यादा निजी और दर्दनाक था।
हाँ, प्रथम विश्व युद्ध का आघात, 1918 में उनके छोटे बेटे एरिक की युद्ध में मृत्यु हो गई।
ओहो।
इस व्यक्तिगत त्रासदी ने उन्हें सभ्यता, प्रगति के विचारों और खासकर विज्ञान के वो जो भौतिकवादी नजरिया है उसकी सीमाओं पर गहराई से सोचने को मजबूर किया। ये उनके बाद के दर्शन में एक मानवीय संवेदना और गहराई लाता है।
और फिर एक तीसरा और शायद सबसे अप्रत्याशित मोड़ आया 63 साल की उम्र में। ये तो हैरानी की बात है,
है ना? आमतौर पर इस उम्र में लोग अकादमिक जीवन समेटने लगते हैं।
बिल्कुल।
पर व्हाइटहेड 1924 में इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका चले गए हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने।
63 की उम्र में?
हाँ। और ये सिर्फ नौकरी या देश बदलना नहीं था, ये गणित और विज्ञान के दर्शन से सीधे तत्वमीमांसा यानी सृष्टि के मूल प्रश्नों की ओर एक जबरदस्त छलांग थी। और यहीं से उनके जीवन का सबसे मौलिक और रचनात्मक दार्शनिक दौर शुरू हुआ।
तो उनके करियर को हम साफ तौर पे तीन हिस्सों में देख सकते हैं। कैम्ब्रिज 1884 to 1910, गणित और तर्क पर फोकस। फिर लंदन 1910 to 1924, जहां वो धीरे धीरे विज्ञान और शिक्षा के दर्शन की ओर झुके।
जी।
और फिर हार्वर्ड 1924 to 1947, जहां उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध प्रक्रिया दर्शन प्रणाली को विकसित किया।
एकदम सही वर्गीकरण है ये। अब जरा उनके कुछ अहम किताबों पर नजर डालते हैं जिनसे उनके विचार सामने आए। प्रिंसिपिया मैथमेटिका की बात तो हुई जिसमें लॉजिक को बदला, पर मजे की बात ये है,
हाँ,
व्हाइटहेड ने बाद में मजाक में कहा था कि उन्होंने खुद भी उसे पूरा कभी नहीं पढ़ा, कुछ हिस्से उन्हें बेहद उबाऊ लगे थे।
क्या बात है, गणित के शिखर पर पहुंचकर ऐसा कहना। खैर, फिर 1925 में आई विज्ञान और आधुनिक विश्व, साइंस एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें क्या खास था?
ये किताब उनके हार्वर्ड काल की शुरुआत थी। हाँ। और इसने उनके नए दर्शन की दिशा तय की, कह सकते हैं। इसमें उन्होंने आधुनिक विज्ञान की कुछ गहरी मान्यताओं पर सवाल उठाए। खास तौर पर उन्होंने प्रकृति के द्विभाजन, बाइफर्केशन ऑफ नेचर की तीखी आलोचना की।
प्रकृति का द्विभाजन?
हाँ। ये वो विचार है जो दुनिया को दो हिस्सों में बांटता है, एक तरफ वस्तुनिष्ठ मापने योग्य दुनिया जिसे विज्ञान पढ़ता है, और दूसरी तरफ व्यक्तिपरक अनुभवजन्य दुनिया, हमारे एहसास, रंग, गंध वगैरह। व्हाइटहेड ने कहा ये विभाजन गलत है, प्रकृति एक अखंड, गतिशील और मूल्ययुक्त प्रक्रिया है।
और फिर आई उनकी सबसे बड़ी और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण कृति 1929 में, प्रक्रिया और वास्तविकता, प्रोसेस एंड रियलिटी।
हाँ, ये उनका मैग्नम ओपस है। इसे समझना आसान नहीं है, ये सच है, पर ये उनके पूरे दर्शन का सार है। इसमें उन्होंने अपनी पूरी तत्व मीमांसा प्रणाली पेश की। उनका मूल तर्क ये था, मतलब उनका कहना था कि वास्तविकता स्थिर चीजों, सब्सटेंसेस से नहीं बनी है,
अच्छा,
बल्कि अनुभव की छोटी छोटी इकाइयों या वास्तविक अवसरों से बनी है जो लगातार बन और बिगड़ रही हैं और एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। ब्रह्मांड स्थिर वस्तुओं का संग्रह नहीं बल्कि घटनाओं का एक निरंतर प्रवाह है,
लगता है।
बिल्कुल, इसे ऐसे समझें कि ये अनुभव की सबसे बुनियादी बूंदें हैं। हर पल वास्तविकता इन अनगिनत अवसरों से मिलकर बनती है। हर अवसर अपने पिछले अवसरों से कुछ ग्रहण करता है, जिसे उन्होंने प्रिहेंशन कहा।
प्रिहेंशन?
हाँ, उसे अपने अनुभव में ढालता है और फिर खुद समाप्त होकर आने वाले अवसरों के लिए डेटा बन जाता है। ये एक लगातार चलने वाली रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें हर क्षण अतीत को सोख कर भविष्य को जन्म देता है। ये एक स्थिर ईंटों से बनी दीवार नहीं बल्कि लगातार बहती नदी जैसा है।
ये तो वास्तविकता को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया है। फिर 1933 में आई विचारों के साहसिक कार्य, एडवेंचर्स ऑफ आइडियाज, क्या ये थोड़ी आसान थी पढ़ने में?
हाँ, तुलनात्मक रूप से ये ज्यादा सुलभ है। इसमें उन्होंने अपने प्रक्रिया दर्शन के नजरिए से पश्चिमी सभ्यता के कुछ बड़े विचारों जैसे स्वतंत्रता, सत्य, सौंदर्य, शांति, इनकी यात्रा को देखा।
अच्छा।
ये दिखाता है कि कैसे विचार इतिहास को आकार देते हैं और कैसे उनका दर्शन रोजमर्रा की जिंदगी और सभ्यता पर लागू होता है।
चलिए अब सीधे उनके मुख्य दार्शनिक योगदानों पर आते हैं। सबसे पहले तो यही प्रक्रिया दर्शन, प्रोसेस फिलॉसफी, इसका मूल मंत्र क्या है?
मूल मंत्र है होना होने से ज्यादा मौलिक है, यानी वास्तविकता स्थिर अवस्थाओं का जोड़ नहीं बल्कि निरंतर परिवर्तन और बनने की प्रक्रिया है. एवरीथिंग इज इन फ्लक्स.
सब कुछ बदल रहा है.
हाँ, ब्रह्मांड चीजों का नहीं, घटनाओं का जाल है. कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय परिवर्तन के पैटर्न के, कह सकते हैं.
और वो प्रकृति के द्विभाजन की आलोचना क्यों कर रहे थे? विज्ञान तो ऐसा करता ही है, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ को अलग करके.
वो इसलिए आलोचना कर रहे थे क्योंकि ये विभाजन वास्तविकता को खंडित करता है, उसे तोड़ देता है. विज्ञान अक्सर दुनिया को सिर्फ बाहर से वस्तुनिष्ठ रूप से देखता है. अणु, परमाणु, ऊर्जा.
हाँ.
और हमारे अंदरूनी अनुभव, रंग देखना, संगीत सुनना, प्यार महसूस करना, इसे व्यक्तिपरक कहकर अलग कर देता है. व्हाइटहेड का कहना था कि ये दोनों अलग नहीं है. मूल्य, भावना, उद्देश्य सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं है, बल्कि प्रकृति की बुनावट में ही शामिल है. दुनिया सिर्फ पदार्थ नहीं, बल्कि अनुभव से भी बनी है.
उन्होंने एक और दिलचस्प चेतावनी दी थी, गलत स्थान पर ठोसता का भ्रम, फैलेसी ऑफ मिसप्लेस्ड कॉन्क्रीटनेस. ये क्या बला है?
ये बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है, मतलब पॉइंट है. इसे एक उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए मौसम का नक्शा है जिसमें हवा के दबाव की रेखाएं बनी हैं.
ठीक है.
ये रेखाएं, ये एब्स्ट्रैक्शंस हैं, ये मौसम को समझने में उपयोगी हैं. लेकिन अगर हम इन रेखाओं को ही असली हवा और बारिश मान बैठे तो ये गलत स्थान पर ठोसता का भ्रम होगा.
अच्छा, समझ गया.
असली ठोस वास्तविकता तो वो है जिसे हम सीधे अनुभव करते हैं, हवा का झोंका, बारिश की बूंदे. व्हाइटहेड विज्ञान को चेता रहे थे कि वो अपने उपयोगी अमूर्त मॉडल्स को ही पूरी जीती जागती वास्तविकता समझने की भूल न करें. मॉडल हकीकत नहीं होते, हकीकत के नक्शे होते हैं.
और उनका वो विचार जिसे जीव का दर्शन या सर्व अनुभववाद, फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनिज्म, पैन एक्सपीरियंशियलिज्म कहा जाता है, क्या इसका मतलब था कि पत्थर और पेड़ भी हमारी तरह महसूस करते हैं?
नहीं नहीं, ये एक आम गलतफहमी है और व्हाइटहेड खुद इससे सावधान करते थे. उनका मतलब ये नहीं था कि इलेक्ट्रॉन या पत्थर सचेत हैं. उनका तर्क ज्यादा सूक्ष्म था. उन्होंने प्रीहेंशन शब्द इस्तेमाल किया जिसका मतलब है अनुभव या महसूस करने का एक बहुत ही प्राथमिक बुनियादी रूप.
अच्छा, प्रीहेंशन.
उनका मानना था कि वास्तविकता के हर स्तर पर, यहाँ तक कि उप परमाणविक कणों में भी, निष्क्रिय सामान होने के बजाय एक तरह की सक्रियता, अपने परिवेश के प्रति एक न्यूनतम अनुक्रिया होती है. हर इकाई अपने आसपास की दुनिया को किसी न किसी स्तर पर ग्रहण करती है.
मतलब चेतना नहीं, पर एक तरह की प्रतिक्रिया.
हाँ, प्रतिक्रिया या ग्रहणशीलता कह सकते हैं. ये चेतना नहीं बल्कि चेतना का आधारभूत तत्व है. ये दुनिया को एक मृत मशीन की तरह देखने के बजाय एक जीवंत परस्पर क्रिया करते हुए तंत्र की तरह देखने का नजरिया था.
तो इन सब विचारों का असर कहाँ कहाँ पड़ा? ये सिर्फ किताबी बातें रही या इनका व्यावहारिक प्रभाव भी हुआ?
नहीं, इनका गहरा और व्यापक असर हुआ है, हालांकि हमेशा शायद मुख्य धारा में नहीं रहा. तत्व मीमांसा में समय, कारण कार्य संबंध और अस्तित्व की प्रकृति को समझने के नए रास्ते खुले. धर्मशास्त्र में तो एक पूरा आंदोलन खड़ा हो गया, प्रोसेस थियोलॉजी.
अच्छा.
इसने ईश्वर की पारंपरिक स्थिर सर्वशक्तिमान छवि को बदलकर उसे एक गतिशील, दुनिया के साथ विकसित होने वाली सत्ता के रूप में देखा. चार्ल्स हार्टशॉन और जॉन कॉब जूनियर जैसे विचारकों ने इसे आगे बढ़ाया.
और पर्यावरण के लिहाज से आपने प्रकृति की बात की थी.
हाँ, यहाँ उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है. व्हाइटहेड ने प्रकृति को एक गहरे तौर पर परस्पर जुड़ी हुई जैविक और आंतरिक रूप से मूल्यवान इकाई के रूप में देखा. ये विचार आज की पारिस्थितिक सोच, इकोलॉजिकल थॉट, खासकर डीप इकोलॉजी के लिए एक मजबूत दार्शनिक आधार देता है.
सही बात है.
जब हम आज इकोसिस्टम और इंटरकनेक्टेडनेस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं व्हाइटहेड की प्रतिध्वनि सुनाई देती है.
शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी कुछ असर हुआ?
हाँ, शिक्षा में उनके विचार थे कि सीखना एक रचनात्मक सक्रिय प्रक्रिया है, न कि खाली दिमाग में जानकारी भरना. यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, जो सिस्टम के उभरने और स्व संगठन का अध्ययन करती है.
हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी.
उसमें भी व्हाइटहेड के प्रक्रियात्मक और संबंध परक विचारों की झलक मिलती है.
अगर हम डिकार्टेज या रसेल जैसे अन्य बड़े दार्शनिकों से उनकी तुलना करें तो व्हाइटहेड कहाँ खड़े होते हैं?
देखिए, डेकार्टेज ने मन और पदार्थ का जो कठोर विभाजन किया था, व्हाइटहेड ने उसे नकार दिया और एक अद्वैतवादी दृष्टिकोण पेश किया जहां दोनों एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं. पारंपरिक भौतिकवाद जो दुनिया को सिर्फ पदार्थ मानता है उसका भी उन्होंने खंडन किया। बर्गसन की तरह उन्होंने भी बदलाव और प्रवाह पर जोर दिया, पर व्हाइटहेड ने इसे एक ज्यादा व्यवस्थित और तार्किक ढांचा दिया।
और रसेल से?
और जैसा हमने पहले कहा, रसेल या विट्गेनस्टाइन जहां भाषा और तर्क पर केंद्रित थे, व्हाइटहेड उनसे अलग हटकर सृष्टि की समग्र तस्वीर पेश करने वाली तत्व मीमांसा रच रहे थे। उनका कैनवस ज्यादा बड़ा था।
ये तो उनके विचार हुए, लेकिन जब ये विचार सामने आए तो लोगों ने इन्हें कैसे लिया? क्या हाथों हाथ अपनाया गया?
नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में प्रतिक्रिया मिलीजुली थी, खासकर प्रोसेस एंड रियलिटी को बेहद जटिल, दुरूह और यहाँ तक कि जरूरत से ज्यादा काल्पनिक, मतलब स्पेक्युलेटिव माना गया।
अच्छा,
20वीं सदी के मध्य में जब विश्लेषणात्मक दर्शन का बोलबाला था, जो अनुभवजन्य पुष्टि या तार्किक विश्लेषण पर जोर देता है, तो व्हाइटहेड की तत्व मीमांसा को अकेडमिक मुख्यधारा में काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया।
लेकिन जैसा आपने बताया, धर्मशास्त्र और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उनका प्रभाव पड़ा।
हाँ, मुख्यधारा से हटकर कई क्षेत्रों में उनके विचारों ने गहरी जड़ें जमाई। प्रोसेस थियोलॉजी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने ईश्वर और दुनिया के रिश्ते पर सोचने का एक नया तरीका दिया। इसी तरह पर्यावरण नैतिकता में उनके प्रकृति के प्रति सम्मान और जुड़ाव के विचार बहुत प्रभावशाली साबित हुए। प्रोसेस साइकोलॉजी में भी चेतना को समझने के लिए उनके विचारों का इस्तेमाल हुआ है।
और आज के समय में क्या उनके विचार प्रासंगिक हैं, या वो बीते जमाने की बात हो गए?
नहीं, मेरे ख्याल से तो पहले से ज्यादा प्रासंगिक हैं। आज हम विज्ञान के न्यूनीकरणवाद, यानी हर चीज को उसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझने की प्रवृत्ति, उसकी सीमाओं को महसूस कर रहे हैं।
हाँ, ये बात तो है।
व्हाइटहेड की अंतर संबंध और समग्रता पर जोर देने वाली सोच इस दौर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्वांटम भौतिकी में जिस तरह वास्तविकता को स्थिर कणों के बजाय घटनाओं और संबंधों के जाल के रूप में देखा जा रहा है, उसमें व्हाइटहेड के विचारों की गूंज सुनाई देती है।
अच्छा,
चेतना के अध्ययन, सिस्टम थ्योरी, यहाँ तक कि पूर्वी दर्शन जैसे बौद्ध या दाओवादी सोच, उनके साथ संवाद में भी उनके विचार उपयोगी साबित हो रहे हैं। उनका काम याद दिलाता है कि हमारे वैज्ञानिक युग में भी सृष्टि के बड़े सवालों पर व्यवस्थित ढंग से सोचना संभव है और जरूरी भी है।
चलिए उनके कुछ यादगार कथनों को देखते हैं। पहला और शायद सबसे मशहूर, यूरोपीय दार्शनिक परंपरा का सबसे सुरक्षित सामान्य लक्षण वर्णन ये है कि इसमें प्लेटो पर लिखी गई टिप्पणियों की एक श्रृंखला शामिल है।
हाँ, ये प्रोसेस एंड रियलिटी से है। इसमें वो एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि कैसे पश्चिमी दर्शन सदियों से प्लेटो के स्थिर शाश्वत सत्ताओं या फॉर्म्स के विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है।
जबकि व्हाइटहेड का जोर परिवर्तनशील प्रक्रियात्मक वास्तविकता पर था। वो कह रहे थे कि दर्शन को प्लेटो की छाया से बाहर निकलकर बदलते हुए जगत पर ध्यान देना चाहिए।
एक और कथन, दर्शन आश्चर्य में शुरू होता है और आश्चर्य में समाप्त होता है।
ये दर्शन की सच्ची भावना को पकड़ता है। मतलब हमें दुनिया को देखकर विस्मित होना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, लेकिन अंत में सब कुछ जान लेने का दंभ नहीं पालना चाहिए।
सही, ज्ञान की खोज जिज्ञासा से शुरू होती है और रहस्य के प्रति सम्मान पर खत्म होती है। हमें जल्दबाजी में निष्कर्षों पर पहुंचने से बचना चाहिए।
और ये जीवन के बारे में, जीवन की कला सबसे पहले जीवित रहना है, दूसरे संतोषजनक ढंग से जीवित रहना है, और तीसरे संतोष में वृद्धि प्राप्त करना है।
ये द फंक्शन ऑफ रीजन से है। ये उनके आशावादी दृष्टिकोण को दिखाता है। जीवन का लक्ष्य सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि अनुभव में गहराई, समृद्धि और रचनात्मकता लाना है। लगातार बेहतर होने, ज्यादा संतुष्टि पाने की कोशिश ही जीवन की कला है।
एक और जो उनकी कार्यशैली बताता है, सरलता खोजो और उस पर अविश्वास करो।
हाँ, ये द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर से है और बहुत व्यवहारिक सलाह है। हमें विचारों में स्पष्टता और सरलता लानी चाहिए, लेकिन सावधान भी रहना चाहिए।
अच्छा,
कहीं ऐसा न हो कि सरलता के चक्कर में हम वास्तविकता की जटिलता को ही नजरअंदाज कर दें। अति सरलीकरण अक्सर सच्चाई से दूर ले जाता है।
और ये थोड़ा चौंकाने वाला, भविष्य का काम खतरनाक होना है। सभ्यता में प्रमुख प्रगति ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो उन समाजों को लगभग नष्ट कर देती हैं जिनमें वे घटित होती हैं।
हाँ, ये एडवेंचर्स ऑफ आइडियाज से है। ये सुनने में भले ही डरावना लगे, पर इसका गहरा अर्थ है। व्हाइटहेड का मानना था कि असली रचनात्मकता और बड़ी प्रगति हमेशा स्थापित व्यवस्थाओं को चुनौती देती है। नए विचार, नई खोजें पुरानी मान्यताओं और संरचनाओं को हिला देती हैं, और ये प्रक्रिया अक्सर उथल-पुथल भरी और खतरनाक होती है। सुरक्षित रहकर बड़ा बदलाव नहीं लाया जा सकता।
ये तो बहुत गहरे विचार हैं, लेकिन उनकी आलोचना भी हुई जैसा आपने बताया।
जटिलता और अस्पष्टता के अलावा और क्या मुद्दे थे?
हाँ, जटिलता एक बड़ी आलोचना थी। उन्होंने बहुत से नए पारिभाषिक शब्द गढ़े, कॉन्क्रेशंस, प्रहेंशन, सुपरजेक्ट, नेक्सस, जिनका मतलब समझना ही अपने आप में एक चुनौती है।
हाँ, ये नाम ही मुश्किल लग रहे हैं।
फिर विश्लेषणात्मक दार्शनिकों के नजरिए से उनकी पूरी तत्व मीमांसा ही अनुभवजन्य साक्ष्य के बिना की गई कोरी कल्पना, मतलब अनवेरिफाइड स्पेकुलेशन थी।
बर्ट्रैंड रसेल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि व्हाइटहेड ने तर्क की सटीकता छोड़कर रहस्यवाद का दामन थाम लिया है।
अच्छा, रसेल ने ये कहा?
हाँ।
और वो सर्वानुभववाद वाली बात?
हाँ, उसे अक्सर गलत समझा गया। लोगों ने सोचा कि वो कह रहे हैं कि चट्टाने और पेड़ भी सोचते समझते हैं, जिसे एनिमिज्म कहते हैं, जबकि उनका दावा ज्यादा तकनीकी था कि अनुभव का एक आदिम रूप वास्तविकता की हर इकाई में मौजूद है, जो उसे अपने माहौल से जोड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि उनका प्रकृति का दर्शन आधुनिक भौतिकी के निष्कर्षों से पूरी तरह मेल नहीं खाता, और कुछ तार्किक विसंगतियों की ओर भी इशारा किया गया।
इन आलोचनाओं के बावजूद उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से भी हैं, कुछ मजेदार बातें।
बिल्कुल, एक तो यही कि उन्होंने कभी औपचारिक डॉक्टरेट की डिग्री नहीं ली, फिर भी वे 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में गिने जाते हैं।
ये तो कमाल है।
हाँ, और वे अपने भुलक्कड़पन के लिए भी मशहूर थे, अपॉइंटमेंट भूल जाना, अपने लिखे कागज खो देना, लेकिन साथ ही वे दिमाग में जटिल गणितीय समीकरण हल कर सकते थे।
ये तो विरोधाभास है, अमूर्त सोचने वाले व्यक्ति का इतना भुलक्कड़ होना, और व्यवहारिक भी थे आप कह रही थीं।
हाँ, वे सिर्फ हवा में किले बनाने वाले दार्शनिक नहीं थे, उन्होंने लंदन और हार्वर्ड में कई एकेडमिक और प्रशासनिक समितियों में काम किया, शिक्षा सुधारों की वकालत की। कोई ये बात तो है ही कि उन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक काम 63 साल की उम्र के बाद शुरू किया। हार्वर्ड में उनके घर पर रविवार शाम को होने वाली गोष्ठियां बहुत प्रसिद्ध थीं, जहां छात्र, प्रोफेसर और टीएस एलियट जैसे बाहरी विद्वान भी आकर गंभीर दार्शनिक चर्चाओं में हिस्सा लेते थे।
वाह, टीएस एलियट भी?
जी।
तो इस सारी चर्चा को समेटते हुए व्हाइटहेड की मुख्य विरासत क्या है, उन्हें हम कैसे याद रखें?
मेरे ख्याल से उनकी सबसे बड़ी देन है ब्रह्मांड को देखने का एक नया नजरिया देना। उन्होंने हमें सिखाया कि दुनिया स्थिर जड़ वस्तियों का ढेर नहीं, बल्कि एक गतिशील, रचनात्मक, परस्पर जुड़ी हुई प्रक्रिया है।
प्रक्रिया?
हाँ।
इश्की।
और आज के लिए उनका संदेश क्या है जो हमें उनसे सीखना चाहिए?
आज जब हम विशेषज्ञता के कारण ज्ञान के विखंडन से जूझ रहे हैं, जब हम अक्सर चीजों को उनके हिस्सों में तोड़कर देखते हैं और समग्र तस्वीर खो देते हैं, व्हाइटहेड हमें याद दिलाते हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है।
सही बात है।
वे हमें न्यूनीकरणवाद से परे जाकर सोचने को प्रेरित करते हैं। उनका दर्शन एक संभावना जगाता है कि शायद ये ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जीवंत, रचनात्मक और अर्थपूर्ण है।
बिल्कुल, और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो मनन कर सके।
हाँ, जरूर। व्हाइटहेड के अनुसार हर छोटी से छोटी घटना, हर अनुभव का क्षण ब्रह्मांड की इस विशाल रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है और उसमें योगदान देता है। तो अगर वास्तविकता खुद ही एक निरंतर रचनात्मक उन्नति और गहरे आपसी जुड़ाव की प्रक्रिया है, तो हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभव, हमारी अपनी रचनात्मकता, हमारे रिश्ते, इन सबका इस विराट ब्रह्मांडे नाटक में क्या स्थान है? क्या हमारा हर पल सिर्फ गुजर नहीं रहा, बल्कि कुछ रच भी रहा है?
सोचने वाली बात है कि हर क्षण मायने रखता है।
बिल्कुल, इस पर सोचना शायद हमें अपने अस्तित्व के अर्थ के थोड़ा और करीब ले जाए। समापन नरेशन। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।